भागवत सार की श्रृंखला में सातवां स्कंद नवे अध्याय पर चर्चा है। कृपया श्लोक को दोहराइए। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादय सुरगण मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानागतयो वचसां प्रवाहे नारादितं गुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किन्तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः श्री प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादय सुरगण मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहे नारादितुं गुरुगुणैरधुनापि पितृः किन्तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते श्री प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादय सुरगण मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहे नारादितुं गुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किन्तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतांगतयो वचसां प्रवाहे नारादितुं गुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजा। श्री प्रह्लाद उवाच। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, ब्रह्मा आदयः, ब्रह्मा जी तथा अन्यों ने सुरगणाः उच्च लोक के निवासी मुनयः परम साधु व्यक्ति अथ भी सिद्धाः जिन्होंने सिद्धि या पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सत्व आध्यात्मिक स्थिति के लिए एकतान गतयः जिन्होंने बिना विचलन के किसी भी भौतिक कार्यकलाप को ग्रहण कर लिया है, वचसाम वृत्तांतों या वचनों का प्रवाह धाराओं के द्वारा न नहीं आराधितुम प्रसन्न करने के लिए पुरु गणे हैं, यद्यपि पूर्णतया योग्य अधुना अब तक अपि भी पिप्रुहु समर्थ थे, किम क्या तोष्टुम प्रसन्न करने के लिए अर्हति समर्थ हैं सह वह भगवान में मेरा हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उग्र जाते हैं असुर परिवार में जन्मा। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं? आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तम उत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, यद्यपि ये सारे व्यक्ति सतोगुणी एवं परम योग्य हैं, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूं। तात्पर्य, मेबी यू कैन रिड्यूस द साउंड अ लिटिल, बहुत ज्यादा है कम कम। तात्पर्य, एक पूर्ण योग्य वैष्णव भगवान की प्रार्थना करते समय अपने को अत्यंत तुच्छ मानता है। उदाहरणार्थ चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जगाई मदाई हैते मुई से पापेष्ट, पूरी से रखीते हैते मुई से लघिष्ट। इस तरह वे अपने आप को विष्टा के कीड़े से भी तुच्छ तथा जगाई एवं मदाई से भी अधिक पापी मानते हैं। शुद्ध वैष्णव अपने विषय में ऐसे ही सोचते हैं। इस तरह यद्यपि प्रहलाद महाराज अत्यंत शुद्ध उच्च वैष्णव थे, किंतु वे अपने को परमेश्वर की प्रार्थना के लिए अत्यंत अयोग्य समझ रहे थे। महाजनो ये न गतः सपन्था। प्रत्येक शुद्ध वैष्णव को इसी तरह सोचना चाहिए। उसे अपनी वैष्णव योग्यताओं का वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, तृणादपि सुनीचे न तरुरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को पगडंडी के तिनके से भी तुच्छ माने और विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उसे मिथ्या प्रतिष्ठा भाव से रहित होना चाहिए और सदैव अन्यों को आदर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में ही भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन कर सकते हैं। विनीत हुए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कृते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धांत रत्नाद्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबंधो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। आठवें अध्याय में भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। और जब हिरण्यकश्यपु को मार दिया और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे उसकी आंतड़ियां निकाल के अपने गले में डाल ली, उसके सिंहासन पर बैठ गए, बहुत क्रोध में थे। और जब इतने क्रोध में थे तो देवताओं ने ऊपर से वर्षा की, सब देवता वहां आए, पुष्प की वर्षा की। फिर देवताओं ने उनको प्रयास किया शांत होने का, अलग अलग देवताओं ने, किन्नरों ने, गंधर्वों ने, चानरों ने, यक्षों ने, सबने अपनी अपनी प्रार्थना की, धन्यवाद दिया सबने कि ये हमें बहुत कष्ट दे रहा था। लेकिन इस सब के बाद भी नरसिंह देव शांत नहीं हुए, उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो अब उनके इतने क्रोध को देखकर उनका जो विराट रूप था, और जैसे पिछले अध्याय में वर्णन किया गया, उनके मुख पर खून लगा हुआ, उनके बालों पर खून लगा हुआ था, दहाड़ रहे थे जोर से, तो सारे देवता घबरा गए। और अब कोई उनको शांत नहीं कर पा रहा था, वहां सारे उपस्थित थे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, शिव जी ने कहा अब शांत हो जाइए, क्रोध शांत कीजिए, लेकिन भगवान को कोई शांत नहीं कर पा रहा था। लक्ष्मी देवी वहां पर थी तो सब देवताओं ने कहा आपके पति हैं, आप जाइए कुछ कीजिए। तो लक्ष्मी देवी पहले तो सोचने लगी मेरे ही पति हैं ना ये। ऐसा रूप लक्ष्मी देवी ने कहा मैंने तो ऐसा इनका रूप नहीं देखा, मुझे तो डर लग रहा, मैं भी नहीं जा सकती ऐसे इनके सामने, है मेरे पति लेकिन इस समय मैं नहीं जा सकती। तो लक्ष्मी देवी तक ने मना कर दिया। तो अब सबने प्रहलाद की ओर देखा, मानो कह रहे हो सब तुम्हारे कारण हुआ है, ये इतना गुस्सा जो भगवान को आया है ये तुम्हारे कारण है, तुम ही जाओ शांत करो। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि तुम जाओ शांत करो। प्रहलाद ने मना नहीं किया, प्रहलाद को भय नहीं हुआ और प्रहलाद गए। जब आदेश मिला ब्रह्मा जी का तब तक वो चुप थे, बाकी सारे लोग प्रयास कर रहे थे, प्रहलाद ने नहीं किया, क्योंकि जब वरिष्ठ इतने प्रयास कर रहे हैं तो प्रहलाद आराम से चुपचाप बैठे थे कि हाँ सब वरिष्ठ कर रहे हैं। लेकिन जब आदेश मिला वरिष्ठों का, ब्रह्मा जी का आदेश मिला, तब प्रहलाद गए। तो देखिए ये बहुत स्थानों पर हम लोग शास्त्रों में देखते हैं कि ये एक नियम का पालन भगवान ने, जब जब भगवान आए, भगवान के भक्त आए, उन्होंने इस नियम का पालन किया, ये दिखलाने के लिए कि भले हमारे अंदर योग्यता हो, हमारे अंदर गुण हो, लेकिन जब तक हमें आदेश नहीं मिलता अधिकारियों का, तब तक भगवान की प्रसन्नता नहीं होती। जैसे रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ने के लिए गए थे, सीता का स्वयंवर हो रहा था, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे थे, रामचंद्र जी बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये तो धनुष में ऐसे ही तोड़ सकता, लेकिन वो बैठे रहे। जनक महाराज ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि लगता है ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, एक वीर नहीं बचा इस पृथ्वी पर। रामचंद्र जी ने कोई क्रोध नहीं किया, बैठे रहे। जब विश्वामित्र मुनि ने उनको कहा कि राम तुम जाओ और अब तुम धनुष तोड़ो, ये धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ, तब रामचंद्र जी उठे। तब तक वो बिल्कुल नहीं उठे। इतने लोग, कोई कोई कुछ कह रहा था, जनक महाराज ने कहा, कुछ नहीं किया भगवान राम ने। तो ये नियम है कि जब तक आदेश नहीं मिले तब तक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदेश के साथ शक्ति आती है। जब हमारे वरिष्ठ हमें आदेश देते हैं, जब हमारे गुरु हमें आदेश देते हैं, उस आदेश का जब हम पालन करते हैं तो उनकी शक्ति उसमें आती है, और इसलिए हम वो कार्य पूरा कर पाते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे अंदर शक्ति है, इसलिए कि उनका आदेश हुआ और उस आदेश के साथ उन्होंने उस कार्य को पूरा करने की शक्ति हमें प्रदान की, तब हम उस कार्य को कर पाते हैं। तो अब प्रहलाद से सारे देवताओं ने कहा कि अब आप जाओ, आप ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद बड़े निर्भय होकर गए। अब प्रश्न आता है, इतने देवता घबरा रहे थे, लक्ष्मी देवी घबरा रही थी, प्रहलाद क्यों नहीं घबरा है? प्रहलाद को क्यों और इनको क्यों भय हुआ? क्या ये भक्त नहीं है? क्या ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवता भक्त नहीं है? क्या लक्ष्मी देवी भक्त नहीं है? तो वो इतना घबरा रही हैं, और प्रहलाद को जैसे ही कहा ब्रह्मा जी ने, जाओ तुम जाकर शांत करो, प्रहलाद चल दिए। क्या कारण हो सकता? जबकि प्रहलाद तो छोटे बालक थे, 5 साल के छोटे से बच्चे थे, तो वो क्यों नहीं भयभीत हुए? इसके कई कारण। पहला कारण, भगवान अपने भक्त की श्रेष्ठता को दिखलाना चाहते थे, इसलिए उन सबको भयभीत किया और प्रहलाद को नहीं किया। अन्यथा क्या हो सकता? क्यों लक्ष्मी देवी भयभीत होंगी? लक्ष्मी देवी जो सतत भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, जिनके द्वारा भगवान को हम लोग सेवा अर्पण करते हैं, तो क्यों वो भयभीत होंगी? तो एक कारण, भगवान अपने भक्त की श्रेष्ठता को दर्शाना चाहते हैं, तो इसीलिए भगवान केवल प्रहलाद को निर्भय बना देते हैं, बाकी सबके हृदय में भय उत्पन्न कर देते हैं। ये पहला कारण है कि वे लोग भयभीत नहीं। दूसरा कारण, प्रहलाद सतत, जितने भी अन्य देवता हैं, वे मिश्रित भक्त हैं। मिश्रित भक्त का अर्थ होता है कि उनके अंदर कोई ना कोई भौतिक कामनाएं बनी हुई हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन प्रहलाद ये शुद्ध भक्त हैं। क्यों? सतत स्मरण करते हैं भगवान का, उनके हृदय में और कोई भावना नहीं। जब वो हिरण्यकश्यपु से नहीं डरे, जब वो हाथियों से नहीं डरे, जब वो सांपों से नहीं डरे, और उन्हें पता था कि मुझे भगवान बचा रहे हैं, तो जिस व्यक्ति ने उनको हर अवस्था में बचाया उससे कैसे डर सकते हैं? जिन चीजों से डरना चाहिए, हाथियों से, सांपों से, पहाड़ से फेंका गया, पानी में फेंका गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, जिनसे डरना चाहिए, उन चीजों में जिसने बचाया प्रहलाद को, जैसे स्थान पर वर्णन है कि जब प्रहलाद को फेंका गया ऊपर से, पर्वत से, तो ऐसा नहीं था कि प्रहलाद घबरा रहे थे, पुकार रहे थे, भगवान बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रहलाद को जैसे ही ऊपर से फेंका गया, भगवान ने उसको दोनों हाथों में लेकर बड़े आराम से नीचे रख दिया, तो प्रहलाद तो बड़े आराम से गोद में बैठकर नीचे गए, वो क्यों चिल्लाएंगे बचाओ बचाओ? भगवान ने जब अग्नि में उनको रखा गया, तो अग्नि में भगवान ने बड़े शांत शीतलता उनको प्रदान की, वो आराम से बैठे थे, एसी चल रहा था उनके लिए, तो लोगों को अग्नि लग रही थी, प्रहलाद को कोई कर। तो जिस व्यक्ति ने ऐसी ऐसी अवस्थाओं में अभी अभी थोड़े समय पहले उनको बचाया है, जब उसको सामने देखेंगे तो कैसे डर सकते हैं, जो सारे डर से उन्हें मुक्त कर रहा। इसलिए प्रहलाद डरे नहीं। तो प्रहलाद भगवान के पास चले गए, भगवान को पूर्ण दंडवत प्रणाम किया, लेट गए भगवान के सामने, पूरा दंडवत प्रणाम कर दिया उन्होंने। और क्रोध में है नरसिंह देव, आसन पर, सिंहासन पर बैठे हैं, दहाड़ रहे हैं, चिंघाड़ रहे हैं, जैसे शेर दहाड़ता है। और अचानक उन्होंने देखा कि ये छोटा सा 5 साल का बालक, कितना उसका आकार होगा, इतनी ज्यादा से ज्यादा इतनी हाइट होगी, कितनी होगी, और नरसिंह देव की क्या हाइट थी। नरसिंह देव की हाइट के लिए हम बार बार एक चीज बताते हैं कि रावण की एक लीला, कि रावण एक समय जब रामचंद्र जी को हरा नहीं पा रहा था तो पाताल लोक में गया बलि महाराज से सहायता मांगने के लिए कि आप आइए, आप युद्ध कीजिए मेरी तरफ से, आप भी तो दैत्य हैं, आप भी तो दैत्य कुल के हैं, तो आप आइए थोड़ी मेरी मदद कीजिए, आपने पहले देवताओं को हराया है, एक कोई मानव आ गया है, मैं हरा नहीं पा रहा हूं, बहुत तकलीफ हो रही है। तो बलि महाराज के पास जब गए तो बलि महाराज ने पूछा कौन है, तो राम लक्ष्मण नाम के दो मानव हैं। तो बलि महाराज समझ गए अच्छा। तो बलि महाराज ने कहा आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूं। तो वो अपने महल के पीछे बहुत बड़ा मैदान था और उसमें ऐसा जितना ये पर्वत देख रहे हैं आप, ऐसे दो पर्वत थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और दोनों सोने के बने हुए थे। तो रावण से कहा देखो, रावण ने देखो इतना बड़ा पर्वत सोने का, इधर देखा इतना बड़ा पर्वत सोने का, तो कहा चाहिए। रावण तो उसको बस सोना और स्त्री दो चीजें दे दो, उसको और कुछ दिखता ही नहीं था, अंधा हो जाता। रावण ने कहा ले जाओ पूरा, हाँ पूरा उठा के ले गए तुम्हारे लिए। तो रावण प्रयास करने लगा, हिला भी नहीं पाया, बहुत बहुत प्रयास किया हिला भी नहीं पाया। रावण सोचने लगा मैं त्रिलोकेश्वर, इतनी शक्ति मेरे अंदर, मैंने कैलाश को हिला दिया था एक समय और ये मैं नहीं हिला पा रहा हूं, क्या बात है। तो बहुत प्रयास करने के बाद जब पसीना पसीना हो गया, रावण ने पूछा बलि महाराज से क्या है ये। बलि महाराज ने कहा कि जिस समय भगवान नरसिंह देव मार रहे थे हिरण्यकशिपु को, तो हिरण्यकशिपु के कान की बालियां यहां गिर गई थी, ये दोनों उसके कान की बालियां हैं। तो जिसके कान की बालियों को रावण हिला नहीं सका, इतने बड़े पर्वत थे, तो रावण को वो समझाने लगे कि जिनके कान की बालियों को तुम नहीं हिला रहे हो, उन उस हिरण्यकश्यपु को नरसिंह देव ने अपनी गोद में रखकर फाड़ दिया था, और वही नरसिंह देव खड़े हैं तुम्हारे सामने रामचंद्र के रूप में, मूर्खता मत करो, युद्ध मत करो। लेकिन रावण तो रावण ही है, इसीलिए वो रावण है। तो रावण ने सुना नहीं। तो अब आप सोचिए, विचार कीजिए कि जिसके कान की बालियां पर्वत के समान हो उसका क्या आकार होगा, मतलब वो जो दो पर्वतों को कान में लेकर घूमता होगा उसका क्या आकार होगा, और नरसिंह देव का क्या आकार होगा। ठीक है हिरण्यकश्यपु तो ठीक है, नरसिंह देव भी उसको पूरा उठा के गोद में रख के फाड़ दिया उन्होंने, उनका क्या आकार होगा। अब वो बैठे हैं सिंहासन पर और 5 साल का छोटा सा बच्चा सामने आके दंडवत कर रहा है। नरसिंह देव ने देखा प्रहलाद महाराज को, जैसे ही देखा बहुत प्रसन्न हो गए, सारा गुस्सा समाप्त, तुरंत उठाया उनको और उनके सर पर हाथ रखा। ये भाग्य बहुत कम लोगों को, बहुत कम भक्तों को मिला है। प्रहलाद को जो भाग्य मिला, केवल सर पर हाथ नहीं रखा, उठाकर गोद में बिठाकर आगे वर्णन आएगा कि उन्होंने उसको चाटा, क्योंकि शेर जब अपने बच्चे को प्रेम करता है तो चाटता, गाय बच्चे को प्रेम करती है तो चाटती। तो हमें तो स्मरण नहीं कि कहीं किसी और भक्त को चाटा हो भगवान ने। प्रहलाद को चाट रहे हैं, आगे अगले अध्याय में आगे वर्णन आएगा कि कितने प्रसन्न हो गए। तो प्रहलाद को उठाया, उनके सर पर हाथ रखा, जैसे ही सर पर हाथ रखा प्रहलाद तो भावाविभोर हो गए, भगवान का स्पर्श हो गया। जिस व्यक्ति को भगवान का स्पर्श हो जाए उसके लिए ये भौतिक अस्तित्व रह नहीं जाता, फिर वो इस भौतिक जगत का नहीं रहता, भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक जगत का नहीं रहता। तो हम लोगों को भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के हस्त का स्पर्श, श्रीमद् भागवत भगवद गीता ये भगवान का रूप है, इसका अगर स्पर्श अपने मस्तक पर करा लें तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक जगत के नहीं होंगे। तो प्रहलाद महाराज भाव विभोर हो गए क्योंकि स्पर्श कर दिया भगवान ने, और अब उन्हें प्रार्थनाएं अर्पण करनी थी, लेकिन प्रार्थना अर्पण करने से पहले वो भगवान को बताने लगे, भगवान को ही नहीं वो ये शिक्षाएं, वैसे प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थनाओं में भी शिक्षाएं दी हैं। प्रार्थनाएं कई प्रकार की होती हैं, एक होती है दैन्य भाव में, कि जहां व्यक्ति अपनी दीनता प्रकट करता है, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार, ये दीन भाव है। कि मुझसे जैसे पतित कोई है नहीं, आप ही उद्धार कर सकते हैं। एक होती है प्रार्थना जो लालसामयी प्रार्थना, लालसामयी मतलब जहां वो इच्छा करता है, कबे हबे बोलो शे दिन अमार, कब वो हमारा दिन आएगा, कब मैं आपके चरणों को आश्रय ले सकूंगा इत्यादि, ये लालसामयी प्रार्थना। और कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जिनमें ज्ञान दिया जाता है, जिसमें भगवान का वर्णन। तो अब प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो ये बताते हैं कि मैं अयोग्य हूं। जैसे श्लोक में पहला श्लोक वो बोलते हैं कि मैं अयोग्य हूं, अर्थात वो भगवान को कहने जा रहे हैं कि भगवान आप ये मत समझना कि मैं अहंकार से आया हूं आपके पास, ब्रह्मा जी आपको शांत नहीं कर पाए, शिव जी शांत नहीं कर पाए, लक्ष्मी शांत नहीं कर पाए, देखो मैं आया हूं आपको शांत करने, ऐसा नहीं सोचिएगा। तो बहुत स्पष्ट सबसे पहले वो कहे मैं अयोग्य हूं, मैं आपके प्रति प्रार्थना नहीं कर सकता। ये ब्रह्मा आदि, जैसे इसमें वो कह रहे ब्रह्मादयः, ये ब्रह्मा आदि ये लोग बड़े श्रेष्ठ लोग हैं। देखिए प्रहलाद महाराज कैसे स्थिति को समझा रहे हैं भगवान को कि मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि इन लोगों की क्या वैल्यू है, देखो कोई शांत नहीं कर पाया, अब मैं करके दिखाऊंगा, नहीं ये लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मादय ये तो बहुत बड़े बड़े, और मैं कौन हूं, एक एक असुर कुल में जन्मा हुआ, कोई मेरे हृदय में कोई योग्यता नहीं, कोई गुण नहीं, इनके अंदर बहुत गुण है, ये सत्व गुण में रहने वाले लोग हैं, और जो दैत्य होते हैं वो तो तमोगुण में रहने वाले होते हैं, तो मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। और प्रभुपाद बहुत सुंदर समझाते हैं तात्पर्य में, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात तात्पर्य के अंत में लिखते हैं, विनीत हुए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। तो वैष्णव का भाव क्या है प्रभुपाद समझाते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य, बहुत छोटा है लेकिन बहुत सुंदर उन्होंने तात्पर्य दिया कि एक पूर्ण योग्य वैष्णव भगवान की प्रार्थना करते समय अपने को अत्यंत तुच्छ समझ रहा है। प्रत्येक शुद्ध वैष्णव को यही सोचना चाहिए, उसे अपनी वैष्णव योग्यताओं का वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। यहां प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भौतिकता का गर्व तो ना हो, धन का बल का इत्यादि, वैष्णव गुणों का भी अहंकार नहीं हो जाना चाहिए कि मान लीजिए भक्ति करते करते आपके अंदर वैष्णव गुण आ गए हैं। वैष्णव गुण क्या है, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आ गया है, आप भगवान की सेवा अच्छे से कर लेते हो, आपकी सेवा के द्वारा कुछ प्रकट हो जाता है, वैष्णव गुण आ गया, उनका भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि उसके बिना जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो सकती। तो हमेशा अपने को अयोग्य मानना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए अब मैं योग्य हो गया। जैसे कभी कभी भक्त कहते हैं कि दीक्षा का समय आया, उनसे कहा जाता है दीक्षा लो, तो कहते हैं नहीं अभी मैं योग्य नहीं। तो कब योग्य हो गए, दो साल बाद कहोगे कि योग्य हो गए, ये सबसे बड़ी अयोग्यता है। अगर कोई कहता है कि मैं अब योग्य हो गया दीक्षा के लिए, कोई योग्य नहीं होता है दीक्षा के, सोचना नहीं चाहिए भक्त को कि मैं अब योग्य हो गया। तो योग्यता क्या है, असली योग्यता है कि हम अपने आप को अयोग्य माने। प्रहलाद महाराज की असली योग्यता वो अयोग्य मान रहे कि मैं कैसे कर सकता, ब्रह्मा आदि इतने देवताओं ने नहीं किया, मैं कैसे प्रार्थना करूं। तो ये भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति के लक्षण है, हमें किसी चीज का अहंकार नहीं, विनीत भाव, नम्र भाव, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। और हम आपको बतला रहे हैं जिस दिन हमारे अंदर अहंकार आ जाता है भक्ति में, भगवान थोड़ा समय सहन करते हैं, वो देखते हैं कि ठीक है ये भक्त है मेरा, अच्छी भक्ति कर रहा है, जब कर रहा है अहंकार आ रहा है पढ़ने थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब देखते हैं बहुत हो गया तो इतनी जोर से थप्पड़ मारते हैं कि फिर व्यक्ति को समझ में आता है मैं क्या कर रहा था, कहां था मैं। भगवान दिखाते हैं तुम्हारी स्थिति, तुम सोचते हो कि तुम ये कर रहे हो ये देखो, तुम प्रचार कर रहे हो अच्छा ये देखो, तुम मंदिर बना रहे हो अच्छा ये देखो, तुम मंदिर चला रहे हो अच्छा ये देखो। तो ये जरा होता है, इसीलिए हमें कभी अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। छोटी छोटी सेवाओं में अहंकार, हम ड्रेसिंग कर लेते हैं, हमें बड़ा अहंकार हो जाता है, मेरे जैसी ड्रेसिंग कोई कर ही नहीं सकता। तो भगवान फिर एक दिन दिखाएंगे करते हो ड्रेसिंग, कभी होती नहीं, भगवान करते हैं ऐसा कई बार है। जो लोग रेगुलर ड्रेसिंग करते हैं उनको अनुभव है कि जब उन्हें बड़ा अहंकार हो जाए कि मैं तो 15 मिनट में ड्रेसिंग कर देता हूं बढ़िया, तो फिर भगवान कभी कभी दिखाते लगे रहते 2 घंटे कुछ होता ही नहीं है, और सब करने के बाद भी लोग आके कहते आज थोड़ा ड्रेसिंग अच्छा नहीं हुआ, क्या बात है। तो वो अरे रोज कर रहा हूं मैं, ये क्या हो गया। तो किसी चीज में नहीं, छोटा सा हमने उदाहरण दिया, लेकिन प्रभुपाद यह बहुत महत्वपूर्ण वैष्णव गुणों का भी, अगर आ गए वैष्णव गुण, ये भक्तों की कृपा है, आचार्यों की कृपा है, हमारी भक्ति के या हमारी साधना के बल पर हमें प्रगति नहीं मिलती है, ये जान लीजिए। कई लोग सोच सकते हैं कि मेरी साधना के बल पर मैं प्रगति कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा जप करता हूं, मैं बहुत अच्छा अध्ययन करता हूं, बहुत अच्छा प्रवचन देता हूं, मेरी साधना के बल पर मैं प्रगति कर रहा हूं। नहीं, हमारी भक्ति में प्रगति हमारी साधना के बल पर नहीं होती। वैसे भी हमारी साधना क्या है, जप में सोते हैं, भागवत में सोते हैं, फिर भी कहते हैं बहुत अच्छा साधना कर रहे हैं हम लोग, हमारी साधना है क्या। तो वैसे भी अगर कोई बहुत अच्छी भी साधना करे, जप में बिल्कुल नहीं सोए, उसकी आंखें बंद नहीं हो, भागवत में बहुत अलर्ट बैठा रहे, अन्य सेवाओं में बहुत अलर्ट हो, वो योग्यता नहीं है भक्ति में प्रगति की। प्रभुपाद कहते हैं विनीत होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, अयोग्य मानना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं बहुत अयोग्य हूं। तो मानो भगवान ने प्रश्न कर लिया हो कि अच्छा बताओ तो फिर योग्यता क्या है। अरे तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, तो तुम किसको योग्यता मांगते हो मेरे मुझे प्रार्थना करने के लिए। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है, मन्ये धन वचन, प्रहलाद महाराज कहते भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि, योग शक्ति क्यों ना हो, मेरी समझ से ये सारी योग्यताएं भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती। तो भगवान ने पूछा अच्छा बताओ योग्यता क्या है। तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन होना, संपत्ति होना, बुद्धि होना, योग बल होना, ये योग्यता की बात कर रहा हूं। तो फिर क्योंकि उनमें से कुछ योग्यताएं तो थी, प्रहलाद महाराज के पास धन था बहुत सारा, राजा के पुत्र थे, तीनों लोगों को जिसने जीत लिया था, तो कहते ये सब योग्यता नहीं है, राजसी ठाट बाट होना, सौंदर्य होना, तपस्या होना, ये ठीक है, ये मदद करते हैं भक्ति में, लेकिन ये योग्यता नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा तपस्वी है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा भक्त होगा। तपस्या भक्ति में आवश्यक है, लेकिन तपस्या ही भक्ति नहीं है, इसको जानना चाहिए। जो चीजें अनिवार्य हैं, सहायक हैं, वो सहायक ही हैं, वो भक्ति नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये सारी योग्यता नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि आपका कुल अच्छा हो, आपका परिवार अच्छा हो, आपके पास धन हो, आपके पास बुद्धि हो, आपके पास योग बल हो, आप तपस्या कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, ये योग्यता नहीं है भगवान को प्रसन्न करने की। तो फिर क्या योग्यता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति ही एकमात्र योग्यता है। गजेंद्र ने ऐसा किया, भगवान का उदाहरण, वो भगवान के भक्त का उदाहरण देते हैं कि गजेंद्र ने ऐसा किया, उसके पास तो कोई धन नहीं था, कोई संपत्ति नहीं, कोई यशवान नहीं था, कोई सौंदर्य नहीं था, लेकिन उसने प्रार्थनाएं अर्पण की। तो गजेंद्र का नाम क्यों ले रहे हैं, और भी तो कई भक्त हैं, क्योंकि गजेंद्र ने प्रार्थनाओं से प्रसन्न किया था भगवान को, और अब प्रहलाद महाराज प्रार्थनाएं करने जा रहे हैं भगवान को, इसीलिए गजेंद्र का बात कह रहे हैं, भगवान को याद दिला रहे कि आप उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए थे ना, अब मैं भी प्रार्थना करने वाला हूं, मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाना। तो ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो जैसे उन्होंने पहले कहा कि कोई मेरी योग्यता नहीं है, तो मानो भगवान ने पूछा कि अच्छा क्या योग्यता है, तो फिर उन्होंने कहा कि इस तरह से ये नहीं, केवल भक्ति ही एक योग्यता है। तो मानो भगवान ने प्रश्न किया कि अच्छा भक्ति योग्यता है तो भक्ति किसके पास रहती है, भक्ति के लिए तो अच्छे कुछ ब्राह्मण गुण इत्यादि चाहिए, मंत्र तंत्र विशारदः। तो प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं बिल्कुल नहीं, एक कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी हो, लेकिन अगर उसके पास भक्ति है तो वो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जिसके पास सारे ब्राह्मण के गुण हैं, सारे मंत्र तंत्र विशारदा जितने भी उसके गुण चाहिए सब है, लेकिन भक्ति नहीं है। जैसे प्रभुपाद कई बार इस श्लोक को कहते हैं, हम लोग उनके प्रवचनों में सुनते हैं कि भक्तिहीनस्य, अगर भक्तिहीन है तो क्या है, केवल शव को सजाना। एक मरे हुए व्यक्ति को बहुत सजा दो, उससे क्या लाभ होने वाला, वो तो मरा हुआ है। तो भक्ति अगर नहीं है तो यही बात है। तो ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप सोच लीजिए, ये नहीं है कि योग्यता, तो ब्राह्मण होने दीजिए, लेकिन ब्राह्मण है भक्ति नहीं है कोई लाभ नहीं। कुत्ता खाने वाला व्यक्ति है, मतलब बहुत नीच स्वपच। ये शब्द बार बार शास्त्रों में आता है स्वपच। क्यों? क्योंकि कुत्ता खाने वाले को बहुत नीच माना जाता है, सबसे अधम मनुष्यों में वो कुत्ता खाने, मतलब बाकी जो चीजें खाते हैं लेकिन कुत्ता जो खाने वाले स्वपच को, इसलिए बार बार उसका उदाहरण दिया जाता है। यानी मांस खाने वालों में भी सबसे निम्न स्वपच। गाय का मांस खाने वाले उनको तो मनुष्य माना ही नहीं जाता, इसीलिए उनको अधम है। ये तो मनुष्यों में सबसे नीचे वो होते हैं जो कुत्ते का मांस खाते हैं। जो गाय का मांस खाते हैं वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो तो राक्षस है, तो इसीलिए उनकी श्रेणी नहीं है। तो इसीलिए यहां कहा गया कि अगर कुत्ते का भी मांस खाने वाला है लेकिन वो अगर ब्राह्मण है तो फिर वो योग्य है, भक्ति है। तो फिर भगवान ने मानो प्रश्न किया हो कि अच्छा भक्ति है, मान लिया, तो ये भक्ति करते हो तो इससे मुझे लाभ होता है, यही तुम कह रहे हो कि भक्ति के द्वारा मेरा लाभ होगा। जब कुछ अर्पण किया जाता है भक्ति से, जैसे भगवान ने भगवद्गीता में कहा भक्त्यामाम, भक्ति से मुझे जान सकते हैं, या फिर पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति से अर्पण करता है तो क्या वो मेरे लिए लाभदायक है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जब हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो वो अर्पण करने वाले के लिए लाभदायक है, भगवान के लिए कोई लाभ नहीं है। भगवान को क्या फर्क पड़ने वाला। अभी उत्सव होता है, हम लोग भगवान को 108 भोग अर्पण करते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि भगवान उस दिन बड़े संतुष्ट हो गए, बहुत अच्छा हुआ 108 भोग मिले, रोज दाल राइस खिचड़ी मिल रही थी। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम 108 भोग अर्पण करते हैं भगवान को तो लाभ हमें मिलता है सेवा का। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी हम लोग अपनी सेवाओं में ये सोच लेते हैं या कभी कभी विचलित हो जाते हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया हम अब सेवा नहीं करेंगे, किसका नुकसान होने वाला, भगवान का तो नहीं। अगर समझिए यहां पर भगवान को किसी कारण से सेवा नहीं भी हुई तो क्या हुआ, भगवान भूखे नहीं रहेंगे। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, उनका तो कोई तकलीफ नहीं है, नुकसान किसका होगा, हम सबका। तो ये प्रहलाद महाराज बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि सेवा का भाव ये होना चाहिए कि हम जब सेवा करें तो कृतज्ञता के भाव में, कि मुझे सेवा का अवसर मिला, इस भाव में नहीं कि अरे मैं तो नहीं करूंगा ये सेवा, ना करूंगा। मंदिर जैसे यहां चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, भक्ति बढ़ रही है पूरे दुनिया में, किसी एक व्यक्ति के उस पर नहीं है। मान लीजिए कि कोई कहते हैं कि कल से मैं प्रचार नहीं करूंगा, मत करो, भगवान का प्रचार नहीं रुकेगा, भगवान की सेवा नहीं रुकेगी, नुकसान हमको होगा। तो प्रहलाद महाराज इस बात को समझा रहे हैं कि हमें किसी भी कारण से सेवा को नहीं रोकना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट होता है तब हम लोग सेवा नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है, उसमें भी हमें सेवा करनी चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, तब भी हम सेवा कर सकते, तो सेवा कभी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन अगर हम कर सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है, तो हमें पूरे क्षमता से सेवा करनी चाहिए, ये सोचकर कि ये मेरे लिए लाभदायक है। सेवा जब ये भगवान से हमारा व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है। कभी कभी हम कोई व्यक्ति है, वो लोग जप करते हैं, बाद में जप छोड़ देते हैं, मैं जप नहीं करूंगा, ये व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया, आज से मैं जप नहीं करूंगा, किसका नुकसान। क्योंकि जब वो समय है जब हम और भगवान साथ में होते हैं, बस आपका भगवान के साथ पर्सनल टाइम, सेवा आपका भगवान के साथ पर्सनल टाइम। लेकिन अगर हम सेवा छोड़ दें, जैसे अभी हम लोग अंदर जाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, भोग लगाते हैं, एकदम निकट का संबंध हो जाता भगवान से। लेकिन अगर हम क्रोध में आके किसी के कहने पर हम सेवा छोड़ दें तो किसका नुकसान है? भगवान का तो नुकसान नहीं। प्रभुपाद एक प्रवचन में ऐसे समझा रहे थे, जब बंबई का मंदिर बनने नहीं दे रहे थे लोग, तो प्रभुपाद यही चीज समझा रहे थे कि कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भगवान यहाँ आए हैं, प्रभुपाद कहते भगवान यहाँ आए हैं सेवा स्वीकारने के लिए, और आप लोग हैं कि जब कीर्तन होए तो आप लोग बोलो, पुलिस में कंप्लेन करो, कीर्तन इज न्यूसेंस। तो प्रभुपाद यही समझाते, कोई नुकसान नहीं होने वाला भगवान को या भगवान के भक्तों, नुकसान उन लोगों को होगा। प्रभुपाद कहते हैं एक प्रवचन में कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको नुकसान होगा। तो इसीलिए ये हमारा भाव होना चाहिए, कृतज्ञता के भाव में सेवा होनी चाहिए कि मुझे सेवा मिली है, भगवान की सेवा कितनी बड़ी बात है। कभी कभी किसी मंदिरों में छोटे मंदिर होते हैं तो सेवा बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो लोग उसको सस्ता ले लेते हैं। वही जब वो मंदिर बहुत बड़े हो जाते हैं तो सेवा के लिए तरसते हैं वही लोग, क्योंकि मिलती नहीं है। बहुत सारे भक्त होते हैं फिर सबको सेवा देनी होती है। ऐसे हमने कई बड़े बड़े मंदिरों में देखा, जैसे छोटे मंदिर होते हैं उनमें बुलाना पड़ता भक्तों को, अब आओ भगवान की अल्टर सेवा करो। बड़े मंदिरों में लाइन लगती है, प्रभु जी मैं आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, समय आप टीम में नहीं आ सकते। कितना साल हुआ? प्रभु जी 10 साल से। नहीं नहीं, अभी थोड़ा साल बाद, और रुको, अंदर जा नहीं सकते, पुजारी से पूछना पड़े, अंदर तक जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन छोटे मंदिरों में खींच खींच के ले जाते हैं, चलो चलो। तो उस समय भाग्य मानना चाहिए। ऐसे हमें कई बड़े मंदिरों के भक्तों ने बताया, वो बताते प्रभु जी जब छोटा था मंदिर बहुत अच्छा था, हम लोग ये कर लेते थे, हम लोग वो कर लेते थे, अभी हम लोगों को अंदर भी जाने नहीं मिलता है। तो ये होता है। तो इसीलिए जितनी मिल जाए सेवा उसको कृतज्ञता के भाव में कर लेना चाहिए, पता नहीं आगे चले। और अगर हम ये क्यों सोचे कि आगे हमें सेवा मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम तो ये सोचे कि कल हम रहेंगे या नहीं वो नहीं पता, सेवा की तो बहुत दूर की बात है, आप रहोगे या नहीं रहोगे वो नहीं पता, तो फिर कैसे सेवा करने वाले। इसलिए आज जो मिली है उसको गंभीरता से कर लेना चाहिए, ये जान के कि ये मेरे लिए लाभदायक है। और ये सत्य है, जितनी सेवा हम भगवान की करते हैं उतना ज्यादा हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, जितनी जिम्मेदारी हम भगवान के लिए लेते हैं उतना ज्यादा कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। कृष्ण प्रसन्न होते हैं देख करके एक भक्त, क्योंकि जिम्मेदारी लेने में चिंताएं होती हैं ना, जब भी कोई किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं तो चिंताएं होती हैं, भगवान प्रसन्न होते, क्योंकि हम किसके लिए ले रहे हैं? भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। तो इसीलिए सेवाओं को हमेशा इस भाव में करना चाहिए। पहली चीज सेवा का भाव कृतज्ञता का होना चाहिए, जैसे ही कोई सेवा मिले इतना हृदय में प्रसन्न होना चाहिए। पानीहट्टी उत्सव के समय नित्यानंद प्रभु दंड दे रहे हैं रघुनाथ दास को, दंड दिया जा रहा है, चोर है ये, तो वो कहते हैं कि चलो तुमको दंड मिलेगा। और क्या दंड है? दधि चीड़ भक्षण कर हमोर गणे, शुनि रघुनाथ शुनि आनंदित हरिदर रघुनाथ मने। तो जब उनको ये कहा गया कि चलो सेवा करो, सबको खिलाओ तुम दही और चीड़ा, बहुत आनंद में आ गए कि आज मुझे सेवा मिल गई सारे भक्तों की। ये भाव है। नित्यानंद ने तो डांट कर कहा था, ये चोर है, इतने अच्छे भक्त है, चोर है, इसको दंड मिलेगा। क्या दंड? चलो सबको दही चीड़ा खिला। इतने आनंदित हो गए, शुनि आनंदित हरिदर रघुनाथ मने, और तुरंत उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। ये नहीं कहा किस चीज का दंड, क्या किया है मैंने। नित्यानंद प्रभु से जाके पूछ सकते थे ना, कैसे आप दंड दे सकते हैं मुझे, किया क्या मैंने? कुछ नहीं किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने इतने आनंदित, क्यों? सेवा मिल गई मुझे। तो इसीलिए ये सेवा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब भक्त सेवा करता है तो ये उसके भले के लिए, उसके अच्छे के लिए होती है। और फिर वो आगे कहते हैं कि अब मैं प्रार्थनाएं अर्पण करूंगा। अभी तक तो वो भगवान को बता रहे थे कि आप कैसे भगवान का ज्ञान, अब मैं प्रार्थनाएं अर्पण करूंगा, क्योंकि प्रार्थनाएं अर्पण करने से मैं शुद्ध हो जाऊंगा, प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो देखिए ये भाव होना चाहिए। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या होना चाहिए? कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान के सामने खड़े होके ये दे दीजिए वो दे दीजिए। भगवान पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं हमें, हम लोग उसके महत्व को नहीं समझते। जो भगवान ने हमें दे दिया इसीलिए और नहीं मांगना चाहिए। तो क्या भाव होना चाहिए प्रार्थना का, कि मैं आपकी प्रसन्नता और अपनी शुद्धता के लिए प्रार्थना अर्पण कर रहा हूं, बस आप प्रसन्न हो जाइए इस प्रार्थना से, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं शुद्धता है। तो फिर वो प्रार्थनाएं अर्पण करना शुरू करते हैं और वो कहते हैं, सबसे पहले भगवान को कहते हैं आपका क्रोध शांत कीजिए। क्या आवश्यकता अभी क्रोध करने की, वो तो मर गया, हिरण्यकश्यप तो मर गया, तो इसीलिए आपका क्रोध शांत कीजिए। तो मानो भगवान ने पूछा हो कि अच्छा मेरे क्रोध से क्या डर लग रहा है, जैसे बाकी देवता डर रहे थे, तो भगवान ने पूछा कि डर लग रहा है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं आपके रूप को देखकर डर नहीं रहा हूं, स्पष्ट कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि शांत हो जाइए और तुरंत कहते कि मैं आपके रूप से डरता नहीं। तो फिर भगवान ने पूछा किससे डरते हो, अगर मेरे रूप से नहीं डरते। प्रहलाद महाराज दो चीजें कहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं एक असत संग से घबराता हूं और दूसरा ये जो भौतिक जगत की बद्धता है इससे घबराता हूं। आपके रूप से कैसे घबरा सकता हूं, आपका रूप तो आनंद देने वाला है। ये भक्त का भाव है, भक्त को भगवान का हर रूप आनंद देने वाला लगता है। जो अभक्त हैं उनको बड़ा विचित्र लगता है। जैसे एक बार पाश्चात्य जगत में इस्कॉन के भक्तों के ऊपर एक केस कर दिया था और केस में उनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो जो लॉयर था वो अगले दिन, और दरअसल वो जो केस था भक्त प्राय हारने वाले थे क्योंकि बहुत उन पर आरोप लगा, ये लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। और फिर एक दिन उनका वकील, जिन लोगों ने केस किया था, उनका वकील कोर्ट में एक बड़ा सा नरसिंह देव का चित्र लेकर आ गया। भक्तों ने जैसे ही देखा, भक्तों ने कहा अब तो केस जीत गया, निश्चित नरसिंह देव स्वयं आ गए, अब क्या होने वाला। और वो लेकर आया, क्यों लेकर आया, दिखाने के लिए कि माय लॉर्ड देखिए ये लोग कैसे भगवान की पूजा करते हैं, ना पूरा मनुष्य है ना पूरा जानवर है, ऐसे ऐसे की तो वो पूजा करते हैं, इनको हमें अनुमति नहीं देनी पड़ी। लेकिन वो केस भक्त जीत गए क्योंकि नरसिंह देव स्वयं आ गए थे। देखिए भगवान को भी कभी कभी कोर्ट में आना पड़ता है भक्तों के लिए। तो नरसिंह देव का ये रूप देखकर प्रहलाद महाराज कहते मुझे कोई भय नहीं है आपसे, आपके ये रूप तो सुंदर रूप है। जैसे हम लोग नरसिंह प्रणति गाते हैं ना कि प्रहलाद आह्लाद दाई है, प्रहलाद को आह्लाद दिया। ये बड़ी विचित्र बात है, प्रहलाद शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, मतलब जिसको भरपूर आनंद है, प्रकृष्ट प्रकृष्ट है पूर्ण संतुष्टि, प्रहलाद पूर्ण रूप से आनंद है। प्रहलाद आह्लाद दाई ने, भगवान ने उसको आनंद दिया जो पूर्ण संतुष्ट है। तो भगवान प्रहलाद कहते मैं घबराता हूं असत संग से, ये मेरा भय। तो प्रहलाद महाराज एक तरह से हम लोगों को सिखा रहे हैं कि अगर हमें डरना है हृदय में, वैसे भक्त को निर्भय होना चाहिए, लेकिन अगर भय है तो केवल एक भय होना चाहिए, असत संग का और भौतिक बद्धता का, कि कहीं मैं असत संग में फंसकर भगवान को भूल ना जाऊं, बद्धता में फंसकर भगवान को भूल ना जाऊं, ये भय होना चाहिए हमें। हमें भय नहीं होना चाहिए अपने धन चले जाने का, अपनी संपत्ति चले जाने का, अपना पद चले जाने का, अपना मान प्रतिष्ठा चले जाने का, परिवार चले जाने का। भय होना चाहिए कि मैं भगवान को ना भूल जाऊं। एक भक्त को यह भय अनिवार्य है, क्यों, क्योंकि कई जन्मों के बाद हमें भगवान की स्मृति हुई है फिर से, और अब अगर हमने उनको भुला दिया तो आगे कई जन्मों तक फिर से हमें इस भौतिक बंधन में पड़े रहना पड़ेगा। इसलिए ये भय होना चाहिए कि मैं भगवान को भुलाऊं नहीं, भगवान को सदैव याद रखूं। सबसे बड़ी हानि जिस समय पूछा गया युधिष्ठिर महाराज से कि जीवन में सबसे बड़ी हानि क्या है, उनका भक्तों का संग चले जाए, यही प्रश्न महाप्रभु ने पूछा था रामानंद राय से, सबसे बड़ी हानि भक्तों का संग चले जाना। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि मुझे असत संग से भय है कि भक्तों का संग नहीं चला जाए। एक भक्त को घबराना चाहिए, डरना चाहिए कि कहीं मैं भक्तों के संग से दूर ना चले जाऊं। इसीलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं बारंबार कि मुझे कुत्ता बना दीजिए लेकिन भक्तों के घर के बाहर खड़ा कीजिए, कोई मुझे चिंता नहीं है, उनका झूठन खाऊंगा मैं, लेकिन रहूं भक्त के घर में। तो इसलिए हमें ये भाव होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ये सिखला रहे कि डर है और कोई डर भय भय नहीं होना चाहिए भक्त को। और किस चीज का भय है? जब भक्त ने पूरा समर्पण कर दिया भगवान को, उसका कुछ है ही नहीं तो भय किस चीज का? उसको तो अपने शरीर चले जाने का भी भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि शरीर तो मेरी संपत्ति है ही नहीं, तो फिर भय क्यों होना? किस चीज का? भगवान को ना भूल जाओ, ये एक भय सदैव होना चाहिए कि भगवान मैं आपको भूलू नहीं कभी। आप कहीं भी रखिए, स्वर्गे वा निराए, आप मुझे स्वर्ग में रखिए, नरक में रखिए, आप जहां चाहे वहां रखिए, लेकिन आपको मैं भूलू नहीं। बस ये प्रहलाद महाराज बता रहे कि असत संग से बचो। उपदेशामृत में भी रूप गोस्वामी इस असत संग की बात बार बार करते हैं। जब वो कहते हैं कि किस तरह भक्ति करनी चाहिए, तो जनसंगस्य लौल्यम च, जनसंग भक्ति को समाप्त करता है और इसीलिए उसको छोड़ना चाहिए। और आगे भी कहते हैं कि संग नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा, जब उनसे पूछा गया कि एक वैष्णव का क्या आचरण होना चाहिए, तो महाप्रभु ने कहा असत संग त्याग ए वैष्णव आचरण। वैष्णव का आचरण यह है कि वो असत संग को त्याग दे। तो ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे भय आपके रूप से नहीं है, मुझे भय असत संग से है। और इसीलिए अभी आगे की प्रार्थनाओं में वो भगवान से मांगेंगे कि वो सदैव भक्तों के संग में रह सकें, शुद्ध भक्तों की सेवा कर सकें। आगे बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं उनकी, अभी और बहुत सी चीजें वो कहने वाले हैं इन प्रार्थनाओं में। आज समय नहीं है, कल इन प्रार्थनाओं को और आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।